एक वैकल्पिक वास्तविकता में एडोल्फ हिटलर का नाम अत्याचार और विनाश से जुड़ा नहीं है, बल्कि मुक्ति और परिवर्तन के साथ। घृणा और पूर्वाग्रह से ग्रस्त दुनिया में जन्मे एडोल्फ हिटलर अंधकार के अग्रदूत के रूप में नहीं उभरा, बल्कि परिवर्तन और सुलह के उत्प्रेरक के रूप में भी। छोटी उम्र से ही एडोल्फ ने दूसरों की पीड़ा के प्रति गहरी सहानुभूति प्रदर्शित की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की गरीबी और निराशा के बीच पले बढ़े उन्होंने दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों के संघर्षों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित एडोल्फ ने अपना जीवन अपने देश के घावों को भरने के लिए समर्पित कर दिया, और एकता और करुणा की भावना को बढ़ावा देना। जैसे जैसे वह प्रसिद्धि की ओर बढ़े, एडोल्फ ने विभाजन और घृणा की राजनीति को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय समावेशिता और समझदारी का संदेश दिया जाना चाहिए। उन्होंने उन प्रणालीगत अवरोधों को हटाने के लिए अथक प्रयास किया जो लंबे समय से अल्पसंख्यक समूहों पर अत्याचार कर रहे थे। जर्मनी के सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय की वकालत करना। अपने अथक परिश्रम से एडोल्फ अपने साथी जर्मनों को पराजय की राख से ऊपर उठाने और आशा और समृद्धि का एक नया मार्ग बनाने में सफल होता है। उनके प्रेरणादायक नेतृत्व में जर्मनी प्रगति और शांति का प्रतीक बन गया है। सभी के लिए बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना। यह एक ऐसी दुनिया है जहां उनकी विरासत प्रेम की है, घृणा की नहीं। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने समय के अंधकार से ऊपर उठता है और बन जाता है प्रकाश का स्तंभ, हमें यह दिखाते हुए कि सबसे अंधकारमय दिनों में भी हमेशा आशा है। क्या होता यदि फ्यूहर एक महान नेता बन जाता और बुढ़ापे में घर पर बिस्तर पर ही उसकी मृत्यु हो जाती? दुनिया उससे कितनी अलग है जो हम जानते हैं। क्या खोया, क्या पाया? यह फासीवाद और नाजीवाद से रहित विश्व है। इसके स्थान पर केवल लोकतंत्र और स्वतंत्रता है, और शायद कुछ और, शायद एक ऐसी जगह जहां आपको स्वीकार किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या क्या हैं। 20वीं सदी के इस वैकल्पिक इतिहास में एडोल्फ हिटलर एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने जर्मनी में एक प्रगतिशील राज्य की स्थापना की जिसका उद्देश्य सभी जर्मन लोगों को एकजुट करना था। अपने अथक परिश्रम और समर्पण से हिटलर का शासन विनाशकारी प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने में सफल रहा और एक समृद्ध राष्ट्र की स्थापना की जिसका सभी लोग सम्मान करते थे। यह वह दुनिया है जहां नरसंहार जैसी क्रूरताएं कभी नहीं हुई, जहां शांति और समृद्धि युद्ध के बजाय सहयोग से प्राप्त की जाती थी। हिटलर द्वारा निर्मित जर्मन राज्य उन सभी लोगों के लिए एक आश्रय स्थल है जो उत्पीड़न और भेदभाव से शरण चाहते हैं। यह राष्ट्र विज्ञान और संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। बर्लिन एक हलचल भरा महानगर बन गया है जो अपनी सहिष्णुता और विविधता के लिए जाना जाता है। यदि हिटलर इस सपने को साकार होते देखने के लिए जीवित रहता तो दुनिया ऐसी ही होती। यह वह दुनिया है जो उस वास्तविकता में खो गई थी जिसे हम जानते हैं, जहां फासीवाद का शासन था और जिसने दुनिया को बर्बाद कर दिया। इस दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता से बचा गया और मानवता ने शांति और एकता का मूल्य सीखा। एक ऐसी दुनिया जहां फ्यूहर अपना हजार साल का साम्राज्य बनाने में कामयाब रहा। हालांकि यह उतना अधिनायकवादी और तानाशाही नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसके विपरीत यह संसदीय प्रणाली वाला एक खुला और प्रगतिशील समाज है। लोकतंत्र और मानवाधिकारों को गंभीरता से लिया जाता है। यहां सामाजिक कल्याण की बात की जाती है और पर्यावरण को भी गंभीरता से लिया जाता है। यह ऐसा विश्व है जिसमें नरसंहार नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं है। यह काले कपड़ों के बिना स्वस्तिक के बिना, ऑशविट्स के बिना एक दुनिया है। नाजी जर्मनी रहित विश्व। सैन्य तानाशाही के स्थान पर इस जर्मनी में एक कार्यशील संसद और सरकार है। राज्य के प्रमुख को फ्यूहर के बजाय राष्ट्रपति कहा जाता है। यह जर्मनी कहीं अधिक शांतिपूर्ण, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उन्नत राष्ट्र है। तीसरे रह के बजाय हिटलर ने 1000 साल का साम्राज्य स्थापित किया है अपने संसदीय गणतंत्र के साथ। लेकिन एडोल्फ की दृष्टि जर्मनी की सीमाओं से परे तक फैली हुई थी। उन्होंने अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व के निर्माण के लिए वैश्विक सहयोग और सहभागिता की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ गठबंधन बनाए। सद्भावना और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना जो पुरानी दुश्मनी और विभाजन से ऊपर हो। विश्व मंच पर शांति और सुलह को बढ़ावा देने के एडोल्फ के प्रयासों को व्यापक प्रशंसा मिली। वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सम्मानित व्यक्ति बन गए। कूटनीति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और शांति के प्रति उनके अटूट समर्पण की सराहना की जाती है। फिर भी अपने नेक इरादों के बावजूद एडोल्फ को उन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा जो घृणा और वर्चस्व की पुरानी विचारधाराओं से चिपके हुए थे। उनके आलोचकों ने उन पर कमजोरी और भोलेपन का आरोप लगाया, यह तर्क देते हुए कि उनकी करुणा का संदेश भूराजनीति की कठोर वास्तविकताओं में इसका कोई स्थान नहीं है। लेकिन एडोल्फ अपने विश्वास पर अडिग रहा। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार कर दिया। यद्यपि उनकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी थी, उन्होंने एक ऐसे विश्व के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कभी कोई कमी नहीं आने दी जहां सहानुभूति और समझ का बोलबाला हो। बलपूर्वक साम्राज्य बनाने के बजाय उन्होंने विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों को अपने शासन के अधीन लाने के लिए कूटनीति का प्रयोग किया। उनके पास एक संघीय प्रणाली है, एक मजबूत केंद्रीय सरकार के साथ साथ राज्यों को स्वायत्तता भी मिलेगी। उनके पास संसद, चुनाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इस प्रकार दुनिया एक बदली हुई जगह बन गई। हालांकि दोनों शक्ति ब्लॉकों के बीच नए तनाव पैदा हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी ब्लॉक और सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी ब्लॉक। युद्ध के बाद की अवधि दोनों पक्षों के बीच शीत युद्ध के रूप में चिह्नित थी। वैचारिक विभाजन बहुत गहरा था और इसके कारण दुनिया भर में कई छद्म युद्ध हुए। यूरोप और शेष विश्व के भविष्य के बारे में पश्चिमी और पूर्वी गुट के विचार विपरीत थे। पश्चिमी गुट एक उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहता था, जबकि पूर्वी ब्लॉक ने मार्क्सवादी लेनिनवादी शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया। इन मतभेदों के कारण लंबे समय तक गतिरोध बना रहा, जिससे विश्व की स्थिरता को खतरा पैदा हो गया। हालांकि जैसे ही दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ रहा था, एक अप्रत्याशित घटना घटी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड को नियुक्त किया गया। फोर्ड एक उदारवादी रिपब्लिकन थे और डेमोक्रेटिक पार्टी में काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने तुरंत दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक दरार को पाटने का प्रयास शुरू कर दिया। 1974 के अंत तक सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव शांति की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। दोनों व्यक्ति 1975 की गर्मियों में एक शिखर सम्मेलन में मिले, जहां उन्होंने हेलसिंकी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉकों की सीमाओं को मान्यता दी गई तथा घोषणा की गई कि दोनों पक्ष एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दोनों नेताओं ने मानवाधिकार और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। हेलसिंकी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद विश्व में तनाव कम हो गया। अभी भी संघर्ष और संकट थे, लेकिन कुल मिलाकर माहौल अधिक आशाजनक था। पश्चिमी और पूर्वी ब्लॉकों ने इन संघर्षों को सुलझाने के लिए मिलकर काम किया, और यहां तक कि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से निपटने के लिए भी हाथ मिलाया। 1990 के दशक में विश्व के सामने मौजूद पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया था। युद्धोत्तर काल में सैन्य खर्च में भारी कमी तथा नागरिक उद्योगों में निवेश में वृद्धि देखी गई। कई पुरानी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं और नई, अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हुईं। विश्व के कुछ क्षेत्रों में अभी भी तनाव था, लेकिन कुल मिलाकर माहौल आशा और आशावाद का था। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व वारसौ संधि के कई देश, रूस, हंगरी और रोमानिया जैसे देश मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं में तब्दील हो गए। इस प्रक्रिया को 21वीं सदी में इन देशों के यूरोपीय संघ में शामिल होने से सहायता मिली। राष्ट्रवाद में पुनरुत्थान हुआ, विशेषकर उन देशों में जिन्होंने हाल ही में स्वतंत्रता प्राप्त की है, जैसे पोलैंड और हंगरी। यूक्रेन के कुछ हिस्सों में अधिक स्वायत्तता और अलगाव की मांग भी नए सिरे से उठने लगी। इस बीच बाल्टिक देश यूरोपीय संघ में पूर्ण सदस्यता के लिए प्रयास जारी रखे हुए हैं, जैसा कि वे 1990 के दशक के आरंभ से करते आ रहे थे। जैसे जैसे अधिक देश यूरोपीय संघ में शामिल होते गए, संगठन की शक्ति और प्रभाव बढ़ता गया, और यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। यूरोप में लोकलुभावनवाद का उदय, हंगरी में विक्टर ऑर्बान और फ्रांस में मरीन ले पेन जैसे राजनेताओं के नेतृत्व में। इसका एक कारण यूरोपीय संघ की बढ़ती शक्ति और प्रभाव भी है। कई लोग, विशेषकर राष्ट्रवादी, वे यूरोपीय संघ को अपने देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते थे। लेकिन जैसे जैसे यूरोपीय परियोजना बढ़ती गई और गति पकड़ती गई, इसके अलावा उन लोगों की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया हुई जिन्हें लगा कि संगठन बहुत प्रगतिशील है। यह अपने कई सदस्य देशों की पारंपरिक जीवन शैली में हस्तक्षेप कर रहा है। इससे सुधार की मांग उठने लगी, जिसमें यूरोपीय संसद की शक्तियों को सीमित करना भी शामिल है, और सदस्य देशों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना। एडोल्फ के नेतृत्व में जर्मनी में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। उन्होंने देश में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए व्यापक सुधार लागू किए। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं में निवेश करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक नागरिक को उन्नति का अवसर मिले। उन्होंने अन्य देशों के साथ भी मजबूत संबंध बनाए, विशेष रूप से पश्चिमी ब्लॉक में। एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में जर्मनी की स्थिति को मजबूत करना। आज जर्मनी एक समृद्ध, खुशहाल राष्ट्र है। शांति और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए इसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। प्रगति और सुधार के चैंपियन के रूप में एडोल्फ हिटलर की विरासत अभी भी कायम है। उन्होंने नवाचार और सुधार की अपनी विरासत को जारी रखने के लिए नेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, एडोल्फ की विरासत कायम रही। यह करुणा और सद्भावना की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। उनका नाम मुक्ति और आशा का पर्याय बन गया। यह एक चमकदार उदाहरण है कि किस प्रकार सबसे अंधकारमय आत्मा को भी प्रेम और क्षमा के प्रकाश से छुआ जा सकता है, और दुनिया भर के लोगों के दिलों में एडोल्फ हिटलर को खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि नायक के रूप में याद किया जाता है, जिनके साहस और करुणा ने इतिहास की दिशा को बेहतर के लिए बदल दिया।